आपदा के विषय में कैसे विचार करें। मृत्यु की लहरों ने मुझे घेर लिया, विनाश की प्रचंड धाराओं ने मुझे घबरा दिया। परमेश्वर का मार्ग तो सिद्ध है। दूसरा शैमुएल 22:5-31। प्राकृतिक आपदा के कारण अपने 10 बच्चों को खोने के पश्चात अय्यूब 1:19 अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब 1:21। पुस्तक के अंत में परमेश्वर द्वारा उत्प्रेरित लेखक उन घटित घटनाओं के विषय में अय्यूब उस समझ की पुष्टि करता है। वो कहता है कि अय्यूब के भाइयों और बहनों ने यहोवा द्वारा उस पर लाई गई सब विपत्तियों के विषय में उसे सहानुभूति दिखाकर सांत्वना दी। अय्यूब 42:11। हमारे लिए इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। नए वर्ष के आरंभ में हमारे लिए यहाँ कुछ पाठ। जब हम जगत में और अपने जीवनों में विपत्तियों के विषय में विचार करते हैं, जैसे कि वो घातक प्राकृतिक आपदा जो दिसंबर 26, 2004 में हिंद महासागर में घटी थी, जो अब तक अभिलेखित सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जिसमें 17 लाख लोग निराश्रित हो गए, 5 लाख लोग घायल हुए और 2.3 लाख से अधिक लोग मारे गए। पाठ 1, शैतान परम नहीं है, परमेश्वर है। अय्यूब के क्लेश में शैतान का हाथ था, परंतु उसका हाथ निर्णायक नहीं था। अय्यूब को पीड़ित करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, अय्यूब 1:12-2:6। परंतु अय्यूब और इस पुस्तक का लेखक परमेश्वर को निर्णायक कारण मानते हैं। जब शैतान ने अय्यूब को फोड़ों से पीड़ित किया, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? अय्यूब 2:10। और लेखक इस शैतानी फोड़े को यहोवा द्वारा उस पर लाई गई विपत्तियां कहलाता है, अय्यूब 42:11। तो शैतान वास्तविक है, शैतान क्लेश लाता है, परंतु शैतान परम और निर्णायक नहीं है। वह तो मानो एक पट्टे से बंधा हुआ है, वह परमेश्वर के निर्णायक अनुमति से आगे नहीं जाता है। पाठ 2, भले ही शैतान 2004 में क्रिसमस के अगले दिन हिंद महासागर में सुनामी का कारण बना, फिर भी वह 2,00,000 मृत्युओं का निर्णायक कारण नहीं है, परमेश्वर है। अय्यूब 38:8-11 में परमेश्वर सुनामी का अधिकार रखने का दावा करता है और वह अय्यूब से अलंकारिक रीति से पूछता है, जब सागर मानो गर्भ से फूट निकला तब किसने द्वार बंद करके उसे रोक दिया और कहा, तू यहीं तक आएगा, इससे आगे नहीं, तथा यहीं तेरी विशाल लहरें रुक जाएंगी। भजन 89:8-9 कहता है, हे यहोवा, समुद्र के उफान पर तेरा ही अधिकार है, जब उसकी तरंगे उठती हैं तू ही उन्हें शांत करता है। और स्वयं यीशु के पास भी आज वही नियंत्रण है जिसे उसने एक बार लहरों के घातक चेतावनियों पर दिखाया। उसने आंधी तथा उठती हुई लहरों को डांटा और वे थम गई और शांति छा गई, लूका 8:24। दूसरे शब्दों में, भले ही शैतान ने भूकंप को कराया था, फिर भी परमेश्वर लहरों को रोक सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। पाठ 3, इस जगत में विनाशकारी आपदाएं न्याय और दया को मिला देती हैं। परमेश्वर के उद्देश्य सरल नहीं है। अय्यूब एक ईश्वर भक्त पुरुष था और उसके क्लेश परमेश्वर की ओर से दंड नहीं थे, अय्यूब 1:1-8। उनका उद्देश्य शुद्धिकरण था, दंड नहीं, अय्यूब 42:6। याकूब 5:11 कहता है, तुमने अय्यूब के धैर्य के विषय में तो सुना ही है और अय्यूब और प्रभु के व्यवहार के परिणाम को देखा है कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। परंतु हम अय्यूब के मरने वाले बच्चों की आत्मिक स्थिति को नहीं जानते हैं। निश्चय ही अय्यूब उनके विषय में चिंतित था, अय्यूब 1:5। संभवतः परमेश्वर ने न्याय में होकर उनके प्राण लिए हों, हम नहीं जानते। यदि यह सत्य है तो वही आपदा अंततः अय्यूब के लिए करुणा और उसके बच्चों के लिए न्याय प्रमाणित हुई। यह दोहरा उद्देश्य सभी आपदाओं के विषय में सत्य है, वे न्याय और दया को मिला देती हैं, वे दंड और शुद्धिकरण दोनों हैं। क्लेश और यहाँ तक कि मृत्यु भी एक ही समय में न्याय और दया दोनों हो सकती हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण यीशु की मृत्यु है, वो न्याय और दया दोनों थी। या यीशु पर न्याय था क्योंकि उसने हमारे उसके अपने नहीं पाप उठा लिया, और यह हमारे प्रति जो उस पर भरोसा करते हैं दया थी, उसने हमारा दंड सह लिया, गलातियों 3:13, पहला पत्रस 2:24, और वह हमारी धार्मिकता बन गया, दूसरा कुरिन्थियों 5:21। दूसरा उदाहरण उस शाप और क्लेशों का है जो आदम और हव्वा के पतन के कारण इस पृथ्वी पर आए। जो लोग ख्रीष्ट पर कभी नहीं विश्वास करते हैं उसे न्याय के रूप में अनुभव करते हैं, परंतु विश्वासी उसे महिमा के लिए तैयारी के रूप में अनुभव करते हैं, जो भले ही पीड़ादायक किंतु साथ में दयापूर्ण भी है। सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई, परंतु अपनी ही इच्छा से नहीं, वरन उसके कारण जिसने उसे अधीन कर दिया। इस आशा में रोमियो 8:20, यह परमेश्वर का अधीन करना है। इसी कारण से सुनामियां आती हैं, परंतु व्यर्थता के लिए अधीन किया जाना आशा में है। पाठ 4, क्रिस्ट अपने लोगों को जो हृदय देता है वह उन लोगों के प्रति करुणा का आभास करता है जो पीड़ित हैं, भले ही उनका विश्वास जो भी हो। जब बाइबल कहती है रोने वालों के साथ रो, रोमियो 12:15, तो वह आगे यह नहीं जोड़ती है कि यदि परमेश्वर उनके रोने का कारण नहीं है। अय्यूब को संतावना देने वालों के लिए इतनी बातें करने की अपेक्षा रोना अच्छा होता। यह बात तब भी परिवर्तित नहीं होती है जब हमें पता चलता है कि अय्यूब का दुख अंततः परमेश्वर की ओर से है। नहीं, दुख उठाने वाले लोगों के साथ रोना उचित है। पीड़ा तो पीड़ा होती है, भले ही उसका कारण जो भी हो। हम सब पापी हैं। पीड़ा के कारणों के आधार पर सहानुभूति नहीं जताई जाती है, परंतु वह तो पीड़ित से संगति के कारण जताई जाती है। हम सब उसमें एक साथ हैं। पाठ 5, अंततः क्रिस्ट हमें बुलाता है कि हम उन लोगों पर दया दिखाएं जो दुख उठाते हैं, भले ही वे इसके योग्य ना हों। यही दया का अर्थ है, ऐसी सहायता जो अयोग्य व्यक्ति को दी जाती है। अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, लूका 6:27। क्रिस्ट ने हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया, रोमियो 5:10। वो हमारे लिए तब मरा जब हम शत्रु ही थे। उस सामर्थ्य के द्वारा और उस उदाहरण के साथ हम भी वही करते हैं।